पिंकेश कुमार की आवाज में बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय प्रश्न पत्र अध्याय सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की विवेचना करें। 1930 के प्रारंभ में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा इसे प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। लाहौर के इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आह्वान किया, विदेशी शासन से अपने देश को मुक्त कराने के लिए अब हमें खुला विद्रोह करना है। 26 जनवरी 1930 को संपूर्ण भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला लिया गया तथा गांव और कस्बों में शपथ लिया गया कि जिस विदेशी शासन ने चारों तरफ से हमारे देश का सत्यानाश किया है उसे शासन के आगे समर्पण करना मनुष्य तथा ईश्वर के प्रति अपराध है। हम अपने को सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार करेंगे। 1920 में असहयोग आंदोलन समाप्त करने तथा कुछ समय के लिए महात्मा गांधी के सक्रिय राजनीति से दूर जाने के बावजूद बढ़ता हुआ अंतर विरोध था देशभक्त शक्तियों की सक्रियता, इन दोनों ने मिलकर उस विशाल जल आंदोलन की जमीन तैयार कर दी जो 1930 में सामने आया। 1922 से 27 के काल में राष्ट्रवाद को जिंदा रखने के लिए जिन तत्वों ने भूमिका निभाई उनमें महत्वपूर्ण स्वराज पार्टी। स्वराज दल की स्थापना मोतीलाल नेहरू तथा सी आर दास ने असहयोग आंदोलन की असफलता के उपरांत की थी। उनका उद्देश्य था विधानसभा में प्रवेश कर 1919 की संवैधानिक ढांचों को ध्वस्त करने के लिए अवरोध उत्पन्न करना। स्वराज पार्टी अपना उद्देश्य भले ही न प्राप्त कर सकी परंतु वस्तुतः विधानसभा के अंदर भारत के राजनीतिक संघर्ष को ले जाकर उसने न केवल भारतीय प्रश्न को जीवित रखा बल्कि सरकार को भी यह एक पैर पर खड़ा रखा। 1927 के उत्तरार्ध में साम्राज्य विरोधी संघर्ष में और तेजी आई। नवंबर 1927 के कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार ने भारतीय समस्या पर विचार करने तथा 1919 के संवैधानिक सुधारों की समीक्षा के लिए एक 7 सदस्यीय साइमन कमीशन की नियुक्ति कर दी। इसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन बनाए गए। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए सरकार ने इसे 1919 में लागू की गई संवैधानिक सुधारों की समीक्षा जो 1929 में होनी थी समय से पहले 1927 में ही सम्मान कमीशन के रूप में नियुक्त कर दिया। इस कमीशन के सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस आयोग को नियुक्त करते समय भारतीयों को इसमें शामिल न करके उनके आत्मसम्मान पर गहरी चोट की गई। यह चोट इतनी तीखी थी कि सामान्यतः सरकार प्रस्त के रूप में प्रसिद्ध लिबरल फाउंडेशन से लेकर मुस्लिम लीग के प्रमुख धड़े तक सभी ने इस कमीशन का बहिष्कार किया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन को भारत पधारने पर इसके साइमन वापस जाओ के नारे से भारतीय आकाश गूंज उठा। जगह जगह पर इस कमीशन को काले झंडे दिखाए गए। साइमन वापस जाओ आंदोलन अभूतपूर्व सफलता थी। इस आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने नृशंस दमन का सहारा लिया। जवाहरलाल नेहरू गोविंद वल्लभ पंत जैसे नेताओं पर भी लाठीचार्ज हुआ। शेर पंजाब लाला लाजपत राय की तो उन्होंने जान ही ले ली। इस आंदोलन ने जरकाओस की वृद्धि की। 1927 के इस दौर में वामपंथी विचारधारा था गुटों का भी विकास हुआ। इसने राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष में जुझारूपण आ रहा था। इस जुझारूपण को दमन तथा वामपंथी एवं मजदूर आंदोलन को कुचलने के लिए 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस चलाया गया परंतु साइमन आयोग की नियुक्ति की तरह इसका परिणाम भी सरकार के प्रतिकूल रहा। मेरठ षड्यंत्र केस ने साम्राज्यवाद विरोधी लहर को तेज किया। लाला लाजपत राय पर चलाई लाठी का जवाब भगत सिंह ने सॉन्डर्स की हत्या करके दिया तथा मजदूरों के दमन के लिए तैयार किए गए विधेयक का उत्तर असेंबली में बम फेंक कर। जब लॉर्ड बर्कनहेड ने भारतीयों को अपने संविधान बनाने की चुनौती दी तो मोतीलाल नेहरू ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जिसमें मोतीलाल को संविधान बनाने वाली समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मोतीलाल नेहरू ने देश के भावी संविधान की रूपरेखा तय करते हुए डोमिनियन स्टेट्स की बात रखी परंतु जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र जैसे युवा नेता ने इनका विरोध किया। उनका तो एकमात्र लक्ष्य स्वराज की प्राप्ति था। जवाहरलाल ने 1927 में मद्रास कांग्रेस में स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित करवा लिया परंतु 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में गांधी तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वाधीनता के प्रस्ताव का विरोध किया गया। गतिरोध को दूर करने के लिए एक समझौते का रास्ता निकाला गया। यह निर्णय हुआ कि ब्रिटिश सरकार को 1 वर्ष का समय दिया जाए। यदि वह 1929 के अंत तक डोमिनियन स्टेट्स प्रदान नहीं करती है तो पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित कर उससे प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया जाएगा। आंदोलन को शुरू करने की व्यवस्था से मुक्ति पाने का एक रास्ता महात्मा गांधी के सामने उनकी मांग थी कि कुछ समझौता का रूप अपनाकर कुछ न्यूनतम मांगों को स्वीकार कर ले। इस उद्देश्य से उन्होंने 30 जनवरी को यंग इंडिया में 11 मांगों को प्रस्तुत किया जिसे मांग लेने पर आंदोलन नहीं चलाया जाता। ये मांग निम्न थे। पहला, समस्त राजनीतिक बंदियों के रिहाई व राजनीतिक मुकदमे वापस लिए जाए। दूसरा, विदेशी कपड़ों के आयात पर निषेध शुल्क लगाया जाए। तीसरा, रुपयों के विनिमय पर विनिमय दर 1 शिलिंग 4 पेंस कर दिया जाए। चौथा, जमीन के लगान में 50% की कमी। पांचवा, मद्य निषेध हो तथा नमक कर पर कर समाप्त किया जाए। छठा, सैनिक बैको कम करके 50% की कटौती। सातवां, बड़ी सरकारी नौकरी में 50% की कटौती। आठवां, भारतीय समुद्र तट पर भारतीय जहाजों को सुरक्षित करने हेतु कानून बनाया जाए। नौवां, खुफिया पुलिस भंग तथा उस पर जन नियंत्रण लगाया जाए। दसवां, आत्मरक्षार्थ शस्त्र रखने के लिए लाइसेंस दिया जाए। परंतु एक विरोधाभास यह भी है कि इन मांगों में गांधी जी ने डोमिनियन स्टेट्स की बात नहीं रखी। उपनिवेशी सरकार ने इस मांग को नहीं माना, अतः 1930 के प्रारंभ में पूर्ण स्वराज के लक्ष्य प्रेरित प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित किया गया। इन मांगों के निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए रजनीपाम दत्त ने लिखा है, संघर्ष की पूर्व बेला में इन 11 शर्तों को प्रकाशित करके साम्राज्यवादियों के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया गया कि स्वाधीनता के मांग केवल मोल भाव के लिए है, परंतु उपनिवेशवादी साम्राज्य द्वारा इन मांगों को ठुकरा देने के बाद कांग्रेस संघर्ष के राह पर चलने के लिए मजबूर हो गई। फरवरी 1930 को साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में गांधी जी को यह अधिकार दिया गया कि वह अपने इच्छानुसार जब चाहे आंदोलन शुरू कर सकते हैं। गांधी जी ने निश्चित किया कि वे नमक कानून को तोड़कर इस आंदोलन को शुरू करेंगे। इसी उद्देश्य से उन्होंने साबरमती आश्रम से गुजरात के दांडी तट तक अपने की यात्रा अपने 78 स्वयंसेवकों के साथ की तथा उन्होंने वहां नमक बनाकर सरकार के कानून की अवहेलना की। नमक कानून तोड़ने के संबंध में विपिन चंद्र ने कहा है, उनकी योजना बहुत समझदारी से बनाई गई तथा ऊपर से शांत और हानि रहित दिखने वाला आंदोलन भयंकर साबित हुआ। 9 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने अपने संघर्ष के विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में निहित मुख्य तत्व थे कानून तोड़कर नमक बनाना, शराब अफीम व विदेशी कपड़ों की दुकान या ठेकों पर धरना देना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, छुआछूत व सांप्रदायिकता का अंत, सरकारी स्कूल और कॉलेजों का बहिष्कार तथा सरकारी नौकरियों से इस्तीफा। इन कार्यक्रमों को लागू करते समय प्रतिज्ञा की गई थी कि कोई स्वराज पाने की सत्य और अहिंसा के आदर्श का ईमानदारी से पालन किया जाएगा तथा हम देखेंगे कि पुष्ट स्वराज हमारे दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा है। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी द्वारा नमक कानून का उल्लंघन करने से आरंभ हुआ स्वामी ने अवज्ञा आंदोलन अपने पहले और मुख्य चरण में 5 मार्च 1931 तक चला, जब गांधी इरविन पैक्ट के अनुसार कुछ शर्त के अधीन स्वामी अवज्ञा आंदोलन को बंद कर देना पड़ा। आम जनता की भागीदारी के दृष्टि से यह आंदोलन बेमिसाल था। इस आंदोलन में 90,000 लोग जेल गए। ब्रिटेन से आयातित कपड़ों में 2/3 की कमी आई। सरकार तथा का लगान से होने वाली आय में भी 2/3 की गिरावट हुई। इस आंदोलन की गांव तथा कस्बों के गरीबों तथा निरक्षर से मिलने वाला समर्थन जबरदस्त था तथा भारतीय महिला के लिए यह आंदोलन उस समय तक के आंदोलनों में सबसे अधिक मुक्तिदायी था और कहा जा सकता है कि इसी के जरिए उन्होंने जनजीवन में अपना स्थान बनाया। वास्तव में स्वामी अवज्ञा आंदोलन का सबसे प्रमुख पहलू सरकार को कर की अदायगी न करने का था। बरदोली में किसानों ने कर देने से मना कर दिया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत तथा मध्य प्रांत में भी कर की उगाही में भारी कमी आई। सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए दमन तथा कूटनीति दोनों का सहारा लिया। वायसराय इरविंग ने गांधी जी के साथ समझौता किया जिसमें सभी बंदियों की रिहाई, लगान में कमी तथा कुछ एक रियायत के बदले आंदोलन को बंद करना स्वीकार कर लिया गया, परंतु सरकार का यह दिखावा सलावा साबित हुआ और नए वायसराय लॉर्ड विलिंगटन ने समझौता को मानने से इनकार करते हुए गांधी नेहरू समेत कांग्रेस के प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। आंदोलन पुनः जागृत हुआ परंतु सभी नेतृत्व के अभाव में इसके पास पहले जैसा तेज नहीं रहा। आंदोलन के इस दूसरे चरण में गांधी जी ने इसमें रुचि लेना कम कर दिया। अगस्त 1932 के सांप्रदायिक पंचाट को रोकने के लिए उन्होंने 8 सितंबर 1933 को आमरण अनशन शुरू किया तथा आंदोलन को 6 सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया। इससे जनता का ध्यान इस आंदोलन से उठ गया। इससे जनता का विश्वास कांग्रेस तथा गांधी जी के ऊपर डबाडोल हो गया। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा, एक नेता के रूप में गांधी जी असफल हुए हैं तथा वह समय आ गया है जब नए सिद्धांत के आधार पर कांग्रेस को पुनर्गठित किया जाए तथा इसके अनुरूप एक नया नेता चुना जाए। जुलाई 1933 में इसे फिर से स्वामी अवज्ञा आंदोलन ने व्यक्तिगत रूप में चलाया गया। सरकार का दमन चक्र भी समानांतर चलता रहा। व्यक्तिगत स्वाज्ञा आंदोलन के सरकार के दमन से बच न सका। 1 अगस्त 1933 को गांधी जी कैद कर लिए गए। अंत में थक हार कर 18 से 19 मई 1934 को कांग्रेस कार्यकारिणी की पटना में हुई बैठक में आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी गई। भारत के राष्ट्रीय इतिहास में स्वामी अवज्ञा आंदोलन का अविस्मरणीय योगदान है। इस आंदोलन ने जन लोकप्रियता का जो चरम सीमा प्राप्त किया वह इससे पूर्व असहयोग आंदोलन में भी देखने को न मिला था। लगभग 90,000 सत्याग्रही बंदी बनाए गए जिसमें स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध सभी तथा सभी वर्ग तबके के लोग थे। इस आंदोलन का सबसे मजबूत पक्ष यह था कि इसके दौरान ग्रामीण कस्बों के निरक्षर था गरीब व्यक्ति भी उतने ही समर्थन दे रहे थे जितना कि इसके समर्पित कार्यकर्ता। दूसरी ओर इस आंदोलन में पहली बार महिलाओं ने घर की चौखट को लांघकर मर्दों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम किया। इससे पुरुषों को एक प्रेरणा मिली तथा आंदोलन में के दिन ब दिन आंदोलन ने दिन ब दिन प्रगति की। इस आंदोलन के महत्व में संबंध में रजनीपाम दत्त का कथन उपयुक्त है। 1930-34 के संघर्ष की जो महान लहर उठी थी उसके दुखद अंत में हमें एक क्षण भी यह नहीं भूल जाना चाहिए कि इस आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही है। यह संघर्ष व्यर्थ नहीं गया था। संघर्ष की भट्टी में तपकर इस आंदोलन ने जनता में एक नई और अपेक्षाकृत अधिक राष्ट्रीय एकता, आत्मविश्वास, गौरव और संकल्प को जन्म दिया था। यह रिकॉर्डिंग पिंकेश कुमार के द्वारा BA प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान द्वितीय पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन हेतु सुजीत कुमार के लिए 26 दिसंबर 2007 को किया गया।